अंधकार से निकालकर रोशनी में लेकर आने के लिए खुद खुद को पहले अज्ञान अंधकार से निकालना है। सो नॉर्मल की डेफिनेशन पहले फिक्स करते हैं, ठीक है। आप दो हाथ आगे कीजिए, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड में हम एक इमोशन रखेंगे, राइट हैंड में दूसरी इमोशन रखेंगे। आपको दोनों में से जो नॉर्मल लगेगी वो हाथ ऊपर करना, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू सी यू अक्रॉस द स्क्रीन। दो हाथ सेम लेवल पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड पे एक इमोशन, राइट पे एक इमोशन, और उसके बाद तुरंत आपने दोनों में से एक हाथ ऊपर करना है जो आपको लगता है ये नॉर्मल है। और नॉर्मल क्या होगा? जो कंफर्टेबल होता है, जिसमें माइंड भी एट ईज होगा और बॉडी के पैरामीटर्स जो आपको हमारे से ज्यादा बेटर पता है एट ईज होने चाहिए। मेरा पल्स रेट, मेरा बीपी, मेरा सब कुछ एट ईज। ओके, लेफ्ट हैंड स्ट्रेस, राइट हैंड काम एंड स्टेबिलिटी विच इज नॉर्मल। लेफ्ट हैंड स्ट्रेस, राइट हैंड काम एंड स्टेबिलिटी विच इज नॉर्मल। राइट हैंड नॉर्मल, लेफ्ट हैंड गुस्सा एंगर, राइट हैंड कंपैशन एम्पैथी फॉरगिवनेस। कौन सा नॉर्मल? राइट हैंड नॉर्मल, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड फियर डर, राइट हैंड फेथ पावर। कौन सा नॉर्मल? राइट हैंड नॉर्मल, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड क्रिटिसिज्म, निंदा करना, कहते ही जाना नेगेटिव किसी और के लिए। राइट हैंड दूसरे की विशेषता देखना, स्पेशलिटी देखना, उसके गुणगान करना। राइट हैंड नॉर्मल, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड ईगो, अहंकार, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरी प्रैक्टिस, मेरा ये। राइट हैंड ह्यूमिलिटी, नम्रता, मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं, वो मुझे यूज करके मुझसे ये सेवा करा देता है। लेफ्ट हैंड कॉम्पिटिशन, जेलेसी, इनका इतना क्यों, मेरा क्यों नहीं, इनकी महिमा क्यों, मेरी क्यों नहीं ये। राइट हैंड दुआएं, उन्होंने मेहनत की, उसका रिजल्ट उनको मिला है, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी बहुत आगे जाएंगे। कितना इजी है ना, कौन सा नॉर्मल है? आपने खुद ने किया ना ऊपर, नॉर्मल कौन सा वाला हाथ नॉर्मल था? आपने एक में भी लेफ्ट हैंड को नॉर्मल नहीं किया, और पूरा समाज लेफ्ट हैंड की सारी इमोशंस को नॉर्मल बोलता रहता है। स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल, वरी इज नॉर्मल। अच्छा, चिंता नॉर्मल या केयर नॉर्मल? चिंता नॉर्मल, केयर नॉर्मल? केयर नॉर्मल। अच्छा एक और करते हैं, एक और करते हैं, अब देखते हैं आप कौन सा वाला हाथ ऊपर करते हो। चलो रखो रखो। एक्सपेक्टेशंस, हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमें लोगों से अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस तो होते ही हैं कि लोग हमारे अनुसार होने चाहिए। एंड राइट हैंड, हर एक आत्मा एक अपनी जर्नी पर है, उसके संस्कार अलग अलग होंगे। आई हैव टू एक्सेप्ट पीपल, हम राय देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना है लोगों को। कौन सा नॉर्मल? एक्सपेक्टेशंस या एक्सेप्टेंस, कौन सा नॉर्मल? ओ चलो जी, आज अगर हमारे सारे डॉक्टर्स जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, आज अगर सिर्फ आप वापस जाकर सबको नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज कर दो, तो भारत विश्व गुरु तो अभी बनना शुरू हो जाएगा। दैट इज सर्टन, दैट इज सर्टन। जस्ट गो एंड शेयर विद एवरीबडी, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल बोलने से वो क्या करते हैं, उसको यूज करते रहते हैं सारा दिन हर कर्म में। कहते हैं स्ट्रेस तो नॉर्मल, गुस्सा तो नॉर्मल, चिंता तो नॉर्मल, डर तो नॉर्मल, कोविड आया तो फियर एंड एंग्जाइटी नॉर्मल। जब कोई चैलेंज आता है तो पावर एंड स्टेबिलिटी नॉर्मल होना चाहिए, फियर एंड एंग्जाइटी कैसे नॉर्मल हो सकता है? प्रेशर्स नॉर्मल है, एक बच्चे के लिए एग्जाम आना प्रेशर होता है। स्ट्रेस नॉर्मल नहीं होता, प्रेशर नॉर्मल होता है, टारगेट नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल की डेफिनेशन हमें समाज को समझानी ही होगी, लेकिन उनको समाज को समझाने से पहले पहले हमें अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज करनी होगी। तो हमने अब आज से यहां से जाने के बाद हम ये नहीं कहेंगे हम डॉक्टर हैं तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है, ये नहीं कह सकते। हम कहेंगे हम डॉक्टर हैं तो ब्लेसिंग्स नॉर्मल है हमारे लिए, और जिनके पास ब्लेसिंग्स हैं, आपको पता है परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं जिनके पास दुआएं होती हैं वो तो लाइट होकर फरिश्तों की तरह उड़ते रहते हैं सारा दिन, क्योंकि दुआएं इतनी है, बैंक बैलेंस में दुआएं कितनी है। हम सब क्या होता है, अपने धन का बैंक बैलेंस चेक करते रहते हैं, आज मैंने कितना अर्न किया, इस महीने मेरी कितनी रेवेन्यू हुई। धन का बैंक बैलेंस क्या चेक करना, वो तो आप हमेशा ही भरपूर कमाएंगे, ये चेक करना चाहिए मैंने ब्लेसिंग्स कितनी कमाई है आज। अपनी ब्लेसिंग्स देखेंगे ना तो सारा स्ट्रेस वैसे ही खत्म हो जाएगा कि मेरे पास इतनी दुआएं हैं। दुनिया में भी लोग कहते हैं दुआएं असंभव को संभव कर देती हैं, दुआएं जीवन में आए हुए विघ्नों को समाप्त कर देती हैं। आपके पास दुआएं सिर्फ तभी नहीं मिलती जब पेशेंट ठीक होकर जाता है। जो पेशेंट एक बार आपसे ठीक होकर चला गया ना, वो पूरी जीवन वो और उसका परिवार आपको याद रखता है, कहते वो डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया, वो डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। तो ब्लेसिंग्स तो फॉर एवर मिलती है, सिर्फ वो पेशेंट जब चला जाए हॉस्पिटल से तब नहीं मिलती है, फॉर एवर मिलती है। तो डॉक्टर्स हैं तो हमारे लिए क्या नॉर्मल है, स्ट्रेस या लाइट रहना, बोल दो अच्छे से, पूरे देश में फैल जाना चाहिए। डॉक्टर्स हैं तो क्या नॉर्मल होना चाहिए, स्ट्रेस या लाइट एंड हैप्पी रहना, लाइट एंड हैप्पी रहना ना। बस अपने माइंड को यहाँ बता दोगे ना, वो वैसे ही हैप्पी रहना शुरू कर देगा। इट इज बिकम लाइक एन अफर्मेशन, स्ट्रेस इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल। अच्छा एक और नॉर्मल, फिर से रखो हाथ, एक और नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट पे है बिजी, बिजी, हम बिजी बहुत है, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और राइट पे है हमारे पास सेवा बहुत है लेकिन हम इजी है, हम इजी है। कौन सा वाला नॉर्मल? अरे वाह, देखा हमें सब कुछ पता होता है, कुछ बताना थोड़ी होता है किसी को, सबको सारे आंसर्स पता है और फिर भी सारा दिन जीवन में बोलते मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी। कभी नहीं बोलना मैं बहुत बिजी हूँ, बिकॉज इट्स अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी। कोई भी लो वाइब्रेशन शब्द का बार 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 उच्चारण करेंगे तो स्थिति तो वैसे ही वैसी बन जाएगी लो वाली। तो आज से हायर वाइब, सारे जो इमोशंस राइट हैंड पे रखे थे ना, उसको हमने अब जीवन में क्रिएट करना शुरू करना है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर आपकी लाइफ में नॉर्मल है और जितने प्रेशर आपके पास हैं शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं होते, नॉर्मल है। लेकिन स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर, इट इज प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, आंतरिक शक्ति, द पावर टू फेस द प्रेशर। तो जितना प्रेशर आपका ज्यादा है, उतना न्यूमरेटर अगर ज्यादा है, उतना डिनोमिनेटर को और बढ़ा देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन डिनोमिनेटर को इग्नोर करेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर कर देते हैं, फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इज इमोशनल हेल्थ। तो सबसे पहले आज से हम नेगेटिव इमोशंस को कभी नॉर्मल नहीं कहेंगे। आपके जो प्रिस्क्रिप्शन की शीट होती है ना, वो बड़ी काम की चीज होती है, वो तो बड़े सालों तक पेशेंट की फाइल में पड़ी रहती है। अब दवाइयां तो आपकी हैंडराइटिंग में होती है, वो तो इलाज हो गया, पूरा हो गया। अगर आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन की दूसरी साइड को प्रिंट करके रखवाए ना, तो बड़ा ज्ञान बटेगा पूरे समाज के अंदर। सबसे पहले तो उसमें इमोशनल हेल्थ नॉर्मल क्या है वो एक पैराग्राफ बना देना, कि पीस इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉट, हैप्पीनेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉट, ब्लेसिंग्स इज नॉर्मल, जेलेसी इज नॉट, एक छोटा सा पैराग्राफ बना दो, वो पढ़ के ही आधे ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो खुद ही कहते रहते हैं, नहीं डॉक्टर कहते हैं कि गुस्सा आए ना तो कर देना चाहिए, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं डॉक्टर कहते हैं गुस्सा आए ना उसको दबाना नहीं चाहिए अंदर, कर देना चाहिए। सिर्फ राइट बोलते हैं दबाना नहीं चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि करना ही नहीं चाहिए जो उसको दबाना पड़े, अगर करते गए तो वो और बढ़ता जाएगा। अब समाज में इस नॉर्मल की डेफिनेशन लाने के लिए सबसे पहले डॉक्टर्स वो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे जिनको कभी गुस्सा नहीं आता, जिनको दूसरों की सफलता देखकर खुशी होती है। हो सकती है ना ऐसे, आपको लगता है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एंगर? हो सकता है, पॉसिबल नहीं? अब तो कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है इस पे। तो आपने कहा था ना आपको आपकी वाइब्रेशन किधर रखनी है, ऊपर रख। थोड़े दिन पहले सेंटर पे हमारे एक भाई आया था, उनके पास एक मशीन थी जिससे एनर्जी फील्ड चेक होती है। तो उन्होंने क्या किया, हॉल में से ऐसे जैसे आप बैठे हैं ऐसे किसी को आगे बुलाया, वो भी डॉक्टर ही थे, डॉक्टर वो ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन है, उनको बुलाया और उनको कहा आपका ऑरा चेक करते हैं। और उनका वो आत्मा का ऑरा बहुत पावरफुल था, तो उनका 10 फीट तक ऑरा ऐसे वाइड स्प्रेड हो रहा था उस मशीन पे दिखाया। फिर उन्होंने उनको कहा कि 30 सेकेंड्स के लिए आंख बंद करो और लास्ट आपने जब गुस्सा किया था बस उस सीन को याद कर लो। उन्होंने 30 सेकेंड आंख बंद की, याद किया जब उनको लास्ट गुस्सा आया था, पर एक मिनट के बाद उनका ऑरा चेक किया, वैसे फ्लैट हो गया था 3 फीट के अंदर। एनर्जी इतनी जल्दी चेंज होती है हमारी, तो वो 10 फीट तक इतना पावरफुल ऑरा था, सिर्फ गुस्से को याद करके, गुस्सा करके नहीं, गुस्से को याद करके, उस इमोशन को यहाँ रीलिव करके वो ऑरा 3 फीट पर आ गया। फिर उनको कहा चलो ये एक ग्लास पानी लो और सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, और ये पानी पी लो। बस उसने वो थ्री थॉट्स कही, पानी पिया, उसका ऑरा वापस चला गया अपने 10 फीट पर। इतना जल्दी फ्लक्चुएट होता है एनर्जी फील्ड हमारे शब्दों से, हमारे संकल्पों से। तो जब हम गुस्सा कर देते हैं, और स्पेशली हॉस्पिटल में जब हम कर देते हैं, वो एक हीलिंग सेंटर है, वहां वाइब्रेशंस हील करते हैं, सिर्फ दवाइयां नहीं हील करती है। ये भी एक बहुत क्लैरिटी चाहिए, सिर्फ मेडिसिन हील नहीं करती, हीलिंग सेंटर की वाइब्रेशंस, हीलिंग सेंटर के सारे लोग वो हील करते हैं। तो हीलिंग सेंटर में तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए ना, होना नहीं चाहिए ना। चलते अंदर एंटर होते ही लोगों को सुकून का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वो यहां आकर तो मेरा आधा दर्द वैसे ही खत्म हो गया, फिर डॉक्टर से मिलने के बाद मेरा बाकी आधा दर्द भी खत्म हो गया, अब डॉक्टर जो इलाज करे वो ठीक है, मैं तो ऑलरेडी अच्छा फील कर रहा हूं। किस किस को ये अनुभव होता है कि आपके पेशेंट्स आपसे मिलने के बाद अच्छा फील करते हैं, ये बताओ, आपको फीडबैक मिलता है ऐसा? देखो फिर अभी तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके दुकान से जाके दवा भी नहीं खरीदी है, खाई भी नहीं है, कैसे अच्छा फील? आपकी वाइब्रेशन, आपकी कन्विक्शन, आपका वो वाइब्रेशनल टच लोगों के मन को ठीक कर देता है, और मन ठीक हो जाए तो। ऐसे ही अगर हीलिंग सेंटर की वाइब्रेशन भी इतनी पॉजिटिव हो, वहां वो एंटर करें जो भैया सिक्योरिटी पे हो उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो, जो बहन रिसेप्शन पे हो इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो, जो नर्सेज उनको अटेंड कर रहे हैं उनकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो, तो फिर तो आते ही बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा पेशेंट। लेकिन वो तब करेंगे जब हम उनको किसी को भी गुस्सा नहीं करेंगे पर। तो हमें गुस्से को तो फिर हीलिंग सेंटर से निकालना ही पड़ता है। आप रेडी हैं अपने कैबिन को, अपने हॉस्पिटल को, अपने क्लिनिक को विदाउट एंगर चलाने के लिए? उसमें अच्छे अच्छे नो एंगर जोन लगा देना, लगा सकते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और उसका एक बेनिफिट और बहुत बड़ा होता है, अगर आप अपने हॉस्पिटल को एक नो एंगर जोन बना देंगे ना, तो पेशेंट को भी गुस्सा करना अलाउड नहीं होता वहां पे, तो आप भी बच जाते हैं कि वो आपके इधर आके किसी को डांट नहीं सकते, क्योंकि उनको दिखाना भाई हमारा हॉस्पिटल तो नो एंगर जोन है, यहाँ आप गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल वो भी तो कितना बड़ा फैक्टर है ना, कैसे कैसे आकर बात करते हैं, कैसे कैसे आकर इरिटेट होते रहते हैं, क्या भाषा यूज करते हैं, क्या एलिगेशंस लगा देते हैं। लेकिन जब हम किसी मर्यादा पर चलेंगे तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई ये स्थान पर तो आपको इस मर्यादा से चलना होता है, ये हॉस्पिटल एक नो एंगल जोन है, तो वो भी उसको फॉलो करेंगे, वो भी उसको फॉलो करेंगे, तो उसमें भी आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो ये बात बात में डांट देना, गुस्सा करना, ये हमारी शक्ति को नीचे लेकर आता है, ये हमारी वाइब्रेशन को यहां नहीं रखता, नीचे लेकर आता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी आर यूजिंग द राइट हैंड इमोशंस, द राइट हैंड इमोशंस। अगर आप एक बार भी एक नर्स को डांट देते हैं, आपको तो भूल जाएगा वो एक मिनट के अंदर, आप अपना नेक्स्ट 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 राउंड पर चले जाएंगे। इट विल टेक टाइम फॉर हर टू कम बैक, वो नॉर्मल पर आने पे उसको टाइम लगेगा अपनी स्थिति पर, और उतनी देर में वो कितने पेशेंट्स की सेवा कर रही है लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर वो सबकी सेवा तो उतने ही स्माइल से करेगी, उतने ही प्यार से करेगी, लेकिन वाइब्रेशन तो लो है ना, तो उसके ऊपर पेशेंट की वाइब्रेशन का असर भी ज्यादा पड़ेगा, और उससे जो हायर एनर्जी वाइब्रेशन पेशेंट को मिल सकती थी वो भी नहीं मिलेगी, बस इसलिए क्योंकि चलते फिरते हमने उसको थोड़ा सा डांट दिया। अब हम सेम बात आराम से भी कह सकते थे, इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्ट हो सकती है, लेकिन एंगर एंड अग्रेशन, ह्यूमिलिएशन की भाषा और वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, वो नीचे खींचती है हम सबको। तो लिखिए लाइफस्टाइल नंबर वन, रेडी, दिस इज ओनली लाइफस्टाइल चेंज। एक तो ना सबको जब आप बताते हैं ना आजकल लाइफस्टाइल ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, तो वो सिर्फ अपनी डाइट और एक्सरसाइज ही ठीक करते रहते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट लाइफस्टाइल। इमोशंस इज लाइफस्टाइल, व्हाट वी वॉच रीड लिसन ईट एंड ड्रिंक इज लाइफस्टाइल। तो फर्स्ट थिंग, वी विल मेक आर हॉस्पिटल, आर ओपीडी, आर क्लिनिक अ नो एंगर जोन, मेक इट अ नो एंगर जोन। कोई गुस्सा नहीं करेगा, आप खुद भी नहीं करेंगे, आप खुद भी नहीं करेंगे, बिकॉज वो पब्लिक इंटरेस्ट में हानिकारक है, हानिकारक है। और जब आप इस तरह से करके पूरे दिन के बाद घर जाएंगे ना शाम को, आपको घर पे भी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपका गुस्से का संस्कार ही निकल जाएगा आपके सिस्टम से। आप वही बात को स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हैं, लेकिन अग्रेसिवली नहीं, ह्यूमिलिएट नहीं करना है किसी को नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी है, किसी को उस बात के लिए एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये जो आपने किया ये बहुत बड़ी गलती है, आज ये हो सकता था। लेकिन उसको वो गलती का एहसास पॉजिटिविटी के साथ दिलाते हैं ना, तभी सामने वाले के अंदर शक्ति होती है उस गलती को ठीक करने के लिए। अगर हम गलती सुनाते हुए उसको डिप्लीट कर रहे ह्यूमिलेशन के साथ, तो उसके पास गलती को ठीक करने की शक्ति बचती नहीं, क्योंकि उसकी फीलिंग इतनी हर्ट हो जाती है वो सामने वाली आत्मा. सो वी विल मेक आवर हॉस्पिटल अ नो एंगर जोन. डन. फर्स्ट चीज. एक और, एज अ हीलर, कई बार आपकी स्लीप कम होती होगी दिन के अंदर, ना रात को आपको उतने घंटे नींद नहीं मिलती होगी जितनी आपको रोज मिलनी चाहिए. कभी इमरजेंसी है, कभी क्राइसिस है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स का ये एक प्रिडोमिनेंट कंसर्न होता है कि हमारी स्लीप हमेशा ज्यादा नहीं होती है. लेकिन एक बात ये भी है कि ज्यादा नींद की हमें जरूरत भी नहीं. हमें ज्यादा नींद की नहीं, हमें डीप नींद की जरूरत है. वी डोंट नीड मोर स्लीप, वी नीड डीप स्लीप. अभी आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज हमारे लाइफ स्टाइल्स अच्छे नहीं है, तो आप समाज को बताते हैं कि आपको ज्यादा सोने की जरूरत है. तो हम उनको कहते हैं आपको 8 घंटा सोने की जरूरत है, आपको 9 घंटा सोने की जरूरत है. हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तो कभी 8 घंटा नहीं सोए थे. दे नेवर स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स. कोई सोए थे कभी 8 घंटा? नहीं. तो वो हेल्दी कैसे थे? क्योंकि वो डीप स्लीप लेते थे. क्यों डीप स्लीप? क्योंकि उनके पास वो सारे खिलौने नहीं थे जो आज समाज के पास है, जिसकी वजह से समाज जल्दी सोता नहीं है रात को. दैट इज द इश्यू. तो वी हैव टू टेल देम दैट इट इज नॉट लॉन्गर स्लीप, यू नीड डीपर स्लीप. क्योंकि एक और एपिडेमिक है समाज में, और वो है स्लीप डिप्राइव्ड. आप अपनी भी चेकिंग करना, बैठे बैठे तो नहीं नींद आ जाती कभी? कभी बैठे बैठे नींद आ जाती है, कभी फ्लाइट में ट्रेन में नींद आ जाती है. सुबह सुबह लोग सोते हैं फ्लाइट और ट्रेन में. सुबह सुबह कैसे सो सकता है कोई? पता ही नहीं चलता दिन की शुरुआत की ट्रेन है या दिन के अंत की ट्रेन है. उस टाइम भी ऐसे सोते हैं, इस टाइम भी ऐसे सोते हैं. हाउ कैन पीपल स्लीप अर्ली इन द मॉर्निंग? बिकॉज वो स्लीप डिप्राइव्ड है. उनसे पूछो आप रात को सोकर आए थे? कहते हाँ बहुत अच्छे सोए थे. लेकिन फिर वो स्लीप डिप्राइव्ड क्यों है? क्योंकि शरीर सोया था, मन नहीं सोया ठीक से. क्यों नहीं सोया? क्योंकि रात को सोने तक वो टीवी देख रहे थे, फोन देख रहे थे, कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, और नेगेटिविटी अपने अंदर भर के फिर सोते हैं. सो लाइफस्टाइल हम पहले फॉलो करें, फिर उनको भी सिखाएं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जल्दी सोना. समाज ने टाइमिंग ही चेंज कर दिया अपने सोने का. अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी वेल्दी वाइज. ये स्लोगन वापस लाने की जरूरत पड़ेगी. पहले भारत में लाएं, फिर भारत से सारे विश्व तक लेकर जाएं. सोने का एक टाइम होता है, ऐसा नहीं कि कभी भी सो सकते हैं. एंड सबसे वल्नरेबल हो गई है हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी, बच्चे यूथ जो कि रात रात पढ़ते हैं. जिस समय उठना चाहिए उस समय सोने जा रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर एंजाइटी इतनी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइड सिम्टम्स बढ़ रहे हैं. इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज. दैट लाइफस्टाइल इज फर्स्ट द स्लीप टाइमिंग एंड द वे ऑफ स्लीपिंग व्हिच हैज गॉन रॉन्ग. लेकिन आज स्टूडेंट कम्युनिटी सेड इट्स नॉर्मल टू स्टे अवेक एंड स्टडी एट नाइट. हमारी तो रात को ही पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है. तो आपको ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि जो रात को जागेगा वो अपनी हेल्थ को अभी से अफेक्ट कर रहा है. चाहे आपको उसका रिजल्ट कुछ सालों बाद पता चले, लेकिन प्रैक्टिस हम करेंगे. तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि जो हाइएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम होता है ऑफ डीप स्लीप, इट इज 10 to 2. ये 4 घंटे में हमें जरूर सोया हुआ होना चाहिए, 10 to 2. और जो हमारा उठने का समय है, जो आप सब लोगों ने यहाँ अनुभव भी किया होगा, आप में से कौन कौन उठा अमृत वेला सुबह यहाँ पर 4 बजे? कौन कौन उठा? अरे वाह, वेरी गुड. अब कल परसों में वापस जाएंगे फिर उठेंगे? कल परसों वापस जाएंगे फिर उठेंगे? उठेंगे ना. लेकिन उठने के लिए पहले टाइम पे सोना पड़ेगा, नहीं तो नहीं उठना चाहिए. लेट सोकर जल्दी उठे, देन वी आर अफेक्टिंग आर बॉडी एंड आर माइंड. सो व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? इट्स कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त, इट इज कॉल्ड अमृत वेला, हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम, हाईएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम. लेकिन उसके लिए हमें 10 बजे सो जाना चाहिए. अगर हम 10 बजे नहीं सोएंगे तो कैसे उठेंगे? अब 10 बजे सोने के लिए, वो तो सबसे अच्छा आप ही हमें बताते हैं कि खाने को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है. कम से कम 2.5-3 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे तो लगते ही हैं. अगर मुझे डीप स्लीप एक्सपीरियंस करनी है तो मुझे डाइजेशन के बाद सोना चाहिए. आई हैव टू फिनिश माई डाइजेशन बिफोर गोइंग टू स्लीप. फिर मेरी नींद में सिर्फ हीलिंग होगी, डाइजेशन पहले पूरी हो चुकी होगी. लेकिन आज समाज में क्या हो रहा है? लेट डिनर, हैवी डिनर. क्योंकि वो एक ही मील है जब सब घर होते हैं, तो हैवी से हैवी चीजें रात को खाते हैं और लेट खाते हैं. किसी से आज पूछो आप कितने बजे रात का खाना खाते हैं? कहते 9, 9:30. दस साढ़े दस दिस इज अ वेरी बिग लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर. इतना लेट खाना और हैवी खाना खाना तो स्लीप ऑब्वियसली ज्यादा सोना पड़ेगा और ज्यादा सो के भी हीलिंग और एनर्जाइजिंग नहीं होगी. ज्यादा सो के भी हो जाती तो भी ठीक था, बट इट डज नॉट हैपन. इट डज नॉट हैपन. सो लेट्स स्टार्ट टीचिंग इट टू द पीपल. डोंट वरी कि वो लोग कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब हम कैसे करेंगे. बोलो आप कैसे करोगे वो आप डिसाइड करो, आपको बताना मेरी जिम्मेवारी है. एंड दिस इज नॉट जस्ट टू द पेशेंट, टेल इट टू द होल कंट्री, टू द होल वर्ल्ड के अर्ली डिनर. लेकिन बताएंगे कब, जब खुद डिनर अर्ली करेंगे. नहीं तो वो आप मुख से बोलेंगे, आपका कन्विक्शन का असर नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको बोलेंगे डॉक्टर साहब आप बात तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन क्या करूं, काम कितना है. डॉक्टर साहब भी बोलेंगे हाँ आप राइट बोल रहे हो, मेरे को भी बहुत काम है, मैं भी जल्दी नहीं खा सकता लेकिन आप जल्दी जरूर खाना. इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क. आप सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, आप एम्बेसडर्स ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल है. हमें भारत का इलाज नहीं करना है, हमें भारत को रोग मुक्त बनाना है. बीमारियां बढ़ती जाए और हम इलाज करते रहे. आपको ये तो नहीं लगता अगर आपने सबको राइट लाइफ स्टाइल सिखा दी पर आपके हॉस्पिटल में आएगा कौन फिर उसके बाद? फिर क्या करेंगे? फिर हॉस्पिटल में आएगा कोई नहीं ना, ऐसा होगा ना? ऐसा नहीं होगा. कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, आपके हॉस्पिटल में तो भीड़ 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 बढ़ती बढ़ती जानी है. लेकिन हमें अपना कर्म राइट करना चाहिए, सबको राइट लाइफ स्टाइल बताना हमारा कर्म है. वो कितना उसको फॉलो करे वो उनका कर्म है, लेकिन राइट बात बताना हमारा कर्म है और हमें ये बताना ही है. सिर्फ देश को नहीं सारे विश्व को बताना है. आज विदेश से लोग हमारे देश में आकर 5 AM लीडरशिप वर्कशॉप्स कराते हैं कि सुबह 5 बजे कैसे उठना चाहिए. हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष से हमें पता है ये ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, लेकिन हम सोए हुए हैं वो आकर हमें बता रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. तो सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोने की विधि ठीक होनी चाहिए, नहीं तो उठना इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. सो एन अर्ली डिनर, अ लाइट डिनर बाय 7 o'clock, वी फिनिश डिनर बाय 7 o'clock, एंड अ लाइट डिनर बाय 9:30 डाइजेशन इज ओवर. By 9:30 digestion is over. अगर किसी दिन, personally I'm telling, अगर किसी दिन लेट हो गया, I'll skip dinner but I will not have a late dinner. I'll skip dinner, it's okay, doesn't matter. खा लिया lunch अच्छे से, but not a late dinner because that late dinner has an effect on the entire sleep and the next cycle. जब आप एक बार इसको करके देखेंगे ना, आपको उसका result पता चलेगा कि आज late खाया तो क्या असर आया, आज जल्दी खाया तो क्या असर आया, आज heavy खाया तो क्या असर आया नींद पे और नेक्स्ट डे, आज लाइट खाया तो क्या असर आया. फिर भी एबल टू कंपेयर. लेकिन अभी क्योंकि हमारा सेम पैटर्न चल रहा है, हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे कि इसका बेनिफिट क्या होता है. सो अर्ली डिनर, लाइट डिनर, उसके बाद 10 बजे सोने के लिए 9 बजे हमें नेगेटिव कंटेंट कंजम्पशन से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा. नेगेटिव कंटेंट कंजम्पशन, चाहे फोन, चाहे टीवी, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे इंटरनेट, नेगेटिव शब्द कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए. हर डॉक्टर की आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप अपने पेशेंट को डाइट शब्द बताते हैं, क्योंकि आप सब उनको डाइट बताते हैं, डाइट इज नो मोर अ फिजिकल डाइट, वी हैव टू टेल देम अबाउट इमोशनल डाइट ऑल्सो. एंड इमोशनल डाइट इज वॉट वी वॉच, वॉट वी रीड, वॉट वी लिसन. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं, वो हमारी इमोशनल डाइट है. अगर आप उनको इमोशनल डाइट नहीं बताएंगे, समाज में मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज कई गुना बढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे. आपकी हीलिंग ही स्लो होगी क्योंकि वो यहाँ पे क्लटर है. तो फिजिकल डाइट के साथ इमोशनल डाइट बताना बहुत जरूरी है, कि हम क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं. तो रात को सोने से 1 घंटा पहले, क्योंकि वो रात का कंटेंट हमारे सबकॉन्शियस में जाता है और सबकॉन्शियस का कंटेंट नींद में हमारे माइंड पर और हमारी बॉडी की एनर्जी पर वर्क करता है. अब मेजॉरिटी लोग रात को सोने से पहले न्यूज देखते हैं. अब न्यूज में कोई ऐसा कंटेंट है जो नींद में हमारे माइंड पर चलना चाहिए, हम वो देखते हैं. हाईएस्ट TRP रात की और अर्ली मॉर्निंग की होती है. दूसरा, हर घर में सीरियल चल रहे हैं जिसमें घर टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, रो रहे हैं, चीट कर रहे हैं. अब ये देखते देखते लोग सो जाते हैं. सो व्हाट इज द वाइब्रेशन दैट इज गोइंग टू वर्क ड्यूरिंग द स्लीप? जेलेसी, हेट्रेड, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, और कुछ नहीं. तो टीवी बंद कर दिया, न्यूज़पेपर रख दिया, फोन में आ गए तो हमारा खिलौना तो हमारे साथ ही है, हमारा फोन के साथ लेकर हम बेड में आ जाते हैं एंड देन वी कीप स्क्रोलिंग द फोन। आप अपने पेशेंट को बता दो आप ठीक होना चाहते हैं तो रात को फोन अपने स्तर पर सोना नहीं। सिंपल, दीज आर गोइंग टू बी थिंग्स विच नीड टू बी एडेड। अब ये आपकी मेडिकल बुक्स में नहीं लिखा होगा क्योंकि ये अभी के नए नए खिलौने हैं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन दैट। एवरी पर्सन इज स्क्रोलिंग द फोन इन बेड, स्पेशली चिल्ड्रेन, पूरा दिन पढ़ते हैं पढ़ते हैं, रात को सोने के टाइम उनको लगता है ये हमारा फ्री टाइम है, वो फोन को स्क्रोल करते रहते हैं एंड हम सबको पता है उस पर हर एप्लीकेशन अडिक्टिव है। तो आप सबको अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन इसके बारे में बताते हैं। कई देशों में, अब शायद भारत में भी, टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन के छोटे थोड़े 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 केसेस शुरू हो चुके हैं। अगर आज आप सबको बताना शुरू कर देंगे तो शायद हमारी समस्या यहीं की यहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर हम आज नहीं बताएंगे तो टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट एडिक्शन विल गो वे अबव अल्कोहल एंड स्मोकिंग एडिक्शन। इट विल गो वे अबव, क्योंकि ये हरेक के पास होगी एडिक्शन, ये हरेक के पास होगी, ये छोटे छोटे बच्चों के पास होगी। थोड़े दिन पहले मैं एक वेबिनार कर रही थी, उसमें बच्चे थे स्कूल के, एक 10 साल की बच्ची, छोटी सी, सो एंजेलिक शी वाज, एंड शी सेड आई हैव अ क्वेश्चन। आई सेड हां जी। शी सेड आई हैव अ वेरी वियर्ड एडिक्शन। आई सेड क्या एडिक्शन है? She said phone. She's a 10-year-old child. I said, बच्चा आपका फोन या आपकी मम्मी का फोन? She said, मेरा फोन. I said, गिफ्ट कर दो अपनी मम्मी को पहली बार, आपके पास फोन क्यों है 10 साल की एज के अंदर? I said, क्या एडिक्शन होती है? She said, YouTube videos. मैं देखती जाती हूँ, मुझसे फोन नहीं रखा जाता। क्या विजुअलाइज कर सकते हैं इसका भविष्य क्या होगा इन आदतों का? इन आदतों का भविष्य क्या होगा? जिसका माइंड मैनिपुलेट हो गया है विद कंटेंट, वो आगे उनकी विल पावर कहां से आएगी? इसलिए कंटेंट कंजम्पशन, इमोशनल डाइट, इस पे एज अ हीलर वी हैव टू एम्फसाइज, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। तो रात को सोने से पहले आपके लिए भी, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ डॉक्टर्स, वो सारा दिन में बहुत काम करते हैं और जब थक जाते हैं कहते रात को आकर टाइम हमारा अपना होता है, तो उस टाइम हम टीवी और फोन के साथ बैठते हैं। आप सारा दिन में डिप्लीटिंग एनर्जी लेकर आए हैं, कम से कम सोने से पहले एनर्जाइज होकर सोइए, अपने आप को और डिप्लीट करके नहीं सोइए। इट इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज टॉक्सिक। जब हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर ईगो है, लस्ट है, ग्रीड है, वायलेंस है, फियर है, क्रिटिसिज्म है, रिडिक्यूल है, लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, निंदा करी जा रही है, तो ये हमारी एनर्जाइजिंग कैसे करेगा? तो कम से कम 1 घंटा पहले हमें डिस्कनेक्ट करना चाहिए। नो नेगेटिव कंटेंट। रात के 15 मिनट अपने लिए रखिएगा लास्ट, दैट हैज टू बी सेल्फ केयर। सेल्फ केयर प्रिंसिपल, आखिरी 15 मिनट हमारे अपने होने चाहिए, आखिरी 15 मिनट। उस 15 मिनट में पहले 10 मिनट आप पॉजिटिव कॉन्टेंट भरिएगा, आपकी सारा दिन की नेगेटिविटी वॉश आउट हो जाएगी। जैसे आप में से मेजोरिटी सभी घर जाके एक शावर लेते होंगे, नहाते होंगे, ताकि सारा दिन की जो इन्फेक्शन है वो जस्ट वॉश आउट हो जाती है इस तरह से। इसी तरह रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट प्योर कंटेंट कंज्यूम कीजिए। ये है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कॉन्टेंट। जैसे आप यहाँ 2-3 दिन से स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें हर शब्द क्या है, प्योरिटी है, पीस है, कंपैशन है, फेथ है, फॉरगिवनेस है, लेटिंग गो है, इसको हर रोज कंज्यूम कीजिए 10 मिनट सोने से पहले। क्योंकि लास्ट कंटेंट जो जाता है ना, वो नींद में सबकॉन्शियस में भी जाता है और उसकी वाइब्रेशन हमारी बॉडी के हर सेल पर जाती है, तब हीलिंग होती है, तब एनर्जाइजिंग होती है। आजकल समाज जब सुबह भी उठता है तो बड़ा थका हुआ उठता है। People don't get up very fresh and energetic nowadays. उठने के बाद उठने का मन नहीं करता बहुत लोगों का, टालते रहते हैं उठना, इसीलिए हर फोन पे स्नूज बटन भी बन गया अभी, क्योंकि उनको पता है पहली बार में नहीं उठते अभी आजकल, तो उनको स्नूज बटन भी दबाया, दबाओ फिर बजेगा। क्यों? 6-8 घंटे सोने के बाद अभी तक फ्रेश नहीं हुए, क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं हुआ, बॉडी रिलैक्स्ड हो गई है, माइंड थका हुआ है। तो 15 मिनट रात के अपने लिए, 10 मिनट हमें स्पिरिचुअल पॉजिटिव प्योर कंटेंट भरना ही भरना है। ये हमारे मन की खुराक है, ये खुराक मिस कभी नहीं करनी है। लास्ट 5 मिनट हम मेडिटेशन करके सोएंगे। मेडिटेशन आप सीख रहे हैं अभी, जाने के बाद आप सेंटर पर भी जाएंगे और सीखेंगे, जाते रहेंगे। अब रात को सोने से पहले क्या करना है, सारा दिन में एक बार रिफ्लेक्ट कर लीजिए। जो सारे मरीज आज ठीक हो गए, जिनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला आज, आपकी बड़ी महिमा करके गए, आपको बहुत दुआएं देके गए, 30 सेकेंड्स रुककर परमात्मा आपका शुक्रिया, ये सारी अप्रिसिएशन आपके लिए थी, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, वो आत्मा तो अपना कर्मा लेकर मेरे पास आई थी, ठीक हो गई, आपका शुक्रिया। तो सारी अप्रिसिएशन कहाँ फॉरवर्ड करनी है, अप्रिसिएशन कंज्यूम नहीं करनी है, अप्रिसिएशन कहाँ फॉरवर्ड करनी है, ऊपर फॉरवर्ड कर दो उसको। अगर अप्रिसिएशन फॉरवर्ड कर दी ना, तो कल अगर क्रिटिसिज्म मिलेगी तो कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इट्स अ स्पिरिचुअल लॉ, निंदा स्तुति एक समान, पेंडुलम सेंटर में होना चाहिए। अगर पेंडुलम अप्रिसिएशन में इधर चला गया तो क्रिटिसिज्म में इधर चला जाएगा, अगर पेंडुलम अप्रिसिएशन में यहां रहा तो क्रिटिसिज्म में भी यहां रहेगा। कोई आकर आपको चिल्ला देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई होते हैं कुछ लोग फेसबुक पे यूट्यूब वीडियो बना के डाल देते हैं, जी हम इस हॉस्पिटल में गए, यहाँ ये हुआ, कोई आपको गूगल पे रिव्यू दे देगा जो बहुत अच्छा नहीं होगा, यू विल बी वेरी स्टेबल, क्योंकि लोगों के संस्कार जितने डिस्टर्ब होते जाएंगे, उनके लिखने के लहजे में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। हमें सिर्फ चेक करना है मैंने अपना कर्म सही किया, बाकी उनका ओपिनियन। उसी तरह जब महिमा भी मिलती है, मैंने तो अपना कर्म किया, कि उनका नजरिया जो वो इतने प्यार से महिमा कर रहे हैं, सरेंडर द अप्रिसिएशन यू गेट टू द डिवाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है टू सरेंडर। उससे हमारी प्रोटेक्शन ये है कि हमारा ईगो, मैंने ये किया, मैंने इनको ठीक किया, मेरी वजह से ये ठीक हो गए, ये मैं शब्द रिस्की शब्द है, मैं शब्द बहुत रिस्की शब्द है। आज सुबह की जो मुरली हमने स्टडी की, तो परमात्मा ने कहा मैं और मेरा, ये शब्द आत्मा को मैला करता है, ये पाप है कहना कि मैंने ये किया, मैं इंस्ट्रूमेंट, परमात्मा ने करा दिया, ह्यूमिलिटी बनी रहेगी। जितनी आपकी सफलता बढ़ती जाए उतनी आपकी ह्यूमिलिटी बढ़ती जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि जितने आपके दीवारों पे अवार्ड बढ़ते जाए उतने आपकी ईगो बढ़ती जाए, नहीं, उतनी आपकी ह्यूमिलिटी बढ़ती जाए, तब है ट्रू सक्सेस। तो सोने से पहले अपनी सफलता को सरेंडर करें, किसी ने अगर आपके साथ आज कुछ गलत कह दिया था, कुछ गलत व्यवहार कर दिया, उसको क्षमा कीजिए सोने से पहले, उस चोट को नींद में नहीं लेके जाना है, नहीं तो वो चोट एक घाव बन जाता है उसके बाद, चोट को सोने से पहले ठीक कर दो, वो सुबह तक खत्म हो गया होगा, और चोट को लेकर सो जाओ तो वो ऐसा घाव बनता है या जीवन भर नहीं याद भूलता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। Forgive people before going to sleep. And if I have done wrong with somebody, let me ask for forgiveness before going to sleep. भले आप बोलकर सॉरी न भी बोले, भले आप लिखकर सॉरी न भी बोले, आप मन से सॉरी बोल दीजिए, बोले I'm sorry मैंने आपको आज डांटा, I'm sorry मैंने आपके साथ आज ठीक से बात नहीं की। मन से भी सॉरी बोलेंगे ना तो उधर तक सॉरी चला जाएगा, पर आपके यहाँ की कर्म की रिकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। फिर कुछ संकल्प लिख लेते हैं, लिखिएगा जरूर, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जो संकल्प हम सोने से पहले करते हैं और सुबह उठते ही करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, थॉट्स मैनिफेस्ट, दे बिकम अ रियलिटी, संकल्प से सिद्धि होती है। तो पहला संकल्प, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। Second संकल्प, I am always calm and stable, मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं। तीसरा संकल्प, I am fearless, मैं निडर हूं। कभी कभी कोई सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो थोड़ा सा डर लगता है, कभी कभी आजकल पेशेंट्स कुछ ना कुछ नहीं कह दे कर दे उसका भी थोड़ा फियर रहता है, कुछ नहीं, हीलर शुड ऑलवेज बी फियरलेस, अपना कर्म करना है और अपने कर्मों पर विश्वास रखना है, तो आई एम फियरलेस, मैं निडर हूं। चौथा, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं सदा खुश हूं। पांचवा संकल्प, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, आई एम एन एंजल ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, आई एम एन एंजल ऑफ गॉड, ये हो गए पांच संकल्प। छठा संकल्प, मेरा मन और शरीर हमेशा हेल्दी, माई माइंड एंड बॉडी इज ऑलवेज हेल्दी, ऑलवेज हेल्दी। अगर कोई छोटी बड़ी कोई भी बीमारी है, कोई हमारा पैरामीटर ठीक, जब आप इसको नॉर्मल, अगले 6 घंटे ये संकल्प शरीर को मिलने वाला है, माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, फिगर भी डाल सकते हैं, उनको दे सकते हैं, माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, सिर्फ अगर जिनका नहीं है, बाकी तो सिर्फ एक ही लाइन डालनी है, माई माइंड एंड बॉडी इज हेल्दी ऑलवेज। फिर एक संकल्प डालते हैं अपने रिश्तों के लिए, रिश्ते मतलब इवन पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, वो रिश्ता भी, आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, एंड ऑल माई रिलेशनशिप्स स्टैंड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, एंड ऑल माई रिलेशनशिप स्टैंड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। मैं लोगों को स्वीकार करती हूँ, लोग मुझे स्वीकार करते हैं, और मेरा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की फाउंडेशन पर टिका हुआ है। कभी ये नहीं सोचना है पेशेंट्स हमें डाउट करते हैं, पेशेंट्स चेंज होने चाहिए, आप अपना संकल्प भेजते जाइए कि मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, ये मुझे निश्चित है। जो संकल्प हम रोज रिपीट करेंगे वो हमारी जीवन की वास्तविकता बन जाता है। अगला संकल्प आप अपने काम के बारे में डालेंगे, जो आप खुद डालेंगे, दैट यू हैव टू पुट डिपेंडिंग ऑन व्हाट एवर यू वांट टू डू। सपोज आज आपकी कोई सर्जरी लाइंड अप है, तो आप संकल्प डाल सकते हैं आज की ये सारी सर्जरीज एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगी, आज हर एक जो मुझसे मिलेगा वो पूरी तरह से हील होकर जाएगा, ये रोज संकल्प डाला जा सकता है। अगर आप कोई क्लिनिक बनाने की सोच रहे हैं, अगर आप कोई हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हैं, तो आप संकल्प डालिए वो क्लिनिक रेडी हो चुका है, मतलब इट इज ऑलरेडी हैपेंड, इट इज ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, वी हैव टू मैनिफेस्ट इट हियर बिफोर वी मैनिफेस्ट इट आउटसाइड। और आखिरी संकल्प जो कि कभी नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी, डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। विजुअलाइज करें इसको, व्हाइट ऑरा, व्हाइट डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से अपने आप को एनवेलप करना है, फिर सारा दिन की लो वाइब्रेशन एनर्जी इस सर्कल में नहीं एंटर कर सकती, इट कैन नॉट कम। अब ये 10 संकल्प है, I am powerful, I am calm and stable, I am fearless, I am happy, I am an angel of God, my body is healthy, I accept people, फिर जो आपकी सेवा है उससे related, and God's power and blessing. हाँ, एक और डाल सकते हैं, I am always easy, I have lot of time, I am easy and I have lot of time. तो basically इसकी equation और भाषा check कर लीजिए, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में हो, हमें वो संकल्प करना है कि आई ऑलरेडी एम दैट। दिस इज पावर ऑफ संकल्प, इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। तो एक बार अपने 8-10 संकल्प बना लिए, अगले कुछ महीनों तक इस संकल्पों को चेंज नहीं करना, इन्हीं को यूज करना है जब तक ये हमारा रियलिटी नहीं बन जाता। तो सोने से जस्ट पहले 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, सिर्फ 2-3 बार इस संकल्प को धीरे धीरे बोल लीजिए अंदर ही, मन में, एंड जैसे जैसे आप इसको बोल रहे होंगे, ये एक बीज है जो सबकॉन्शियस में जाता जा रहा है, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम फियरलेस, ये जाता जा रहा है, ये उस रिकॉर्डिंग को क्लीन करने वाला है जिसने बहुत सालों से बोला आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम टेंस्ड, गुस्सा तो आता ही है, ये ओवरराइट करने वाला है उसके ऊपर, कंप्लीटली कोडिंग चेंज होने वाली है। रात को सोने से पहले इसको जरूर बोलेंगे तो वो लास्ट लेयर ऑफ कंटेंट होगी, लास्ट। फिर 6 घंटे ना ये वाइब्रेशन हमारे ऊपर चलने वाले हैं, फिर सुबह उठते ही यही संकल्प फिर से रिपीट करेंगे, जो संकल्प आपने रखे होंगे सुबह उठते, क्योंकि फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग, कहते हैं ना सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब मन ने सुबह सुबह कौन सा संकल्प पहले किया था, तो सबसे पहला संकल्प परमात्मा शुक्रिया, एंड देन वी रिपीट आवर संकल्प। फिर सुबह के दिन की शुरुआत में आपको शायद हो सकता है बहुत जल्दी उठ के हॉस्पिटल जाना है करना है, लेकिन फिर भी कभी भी समय निकालकर, और नहीं भी समय मिलता है तो ट्रैवल टाइम, क्या अपने घर से हॉस्पिटल तक 5 मिनट तो लगेंगे, 10 मिनट तो लगेंगे, उस टाइम को यूज करके उस समय में आपको वो हेल्दी इमोशनल डाइट फिर से डालनी, मतलब स्पिरिचुअल कंटेंट इनटेक, स्पिरिचुअल कंटेंट इनटेक, माइंड में मन की खुराक जरूर देनी है सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले, ताकि सुबह सुबह हमारा माइंड इधर आ जाए, हमने खुराक ले लिया उसको, हमने मेडिटेशन कर ली, हमने अफर्मेशंस बोल दिए, हमने स्पिरिचुअल डाइट ले ली, इसको यहाँ कंज्यूम कर दिया, सुबह कर लिया, रात को कर लिया, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ इधर होने लगेगी, हमारी वाइब्रेशन यहां होने लगेगी, फिर सारा दिन में राइट साइड वाली नॉर्मल इमोशंस कर्म में आना इजियर होता जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम इजी, क्योंकि वो हमने भरा है तो फिर वो इजी होता जाएगा। और सारा दिन में जब खाना खाने के लिए बैठेंगे तो खाने से पहले भी अपने संकल्प जरूर दोहरा लीजिएगा, आप हॉस्पिटल में खाते हैं, आप हॉस्पिटल में पानी पीते हैं, वहां दर्द की एनर्जी है, तो आपके खाने और पानी पर भी उसका असर पड़ता ही पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हम उस वाइब्रेशन में हैं। और सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, हम सब करते हैं, हम माउंट आबू में रहकर भी ये करते हैं कि खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले 5 सेकंड रुकते हैं, परमात्मा को शुक्रिया करते हैं और अपने खाने पानी में अपने संकल्पों से एनर्जाइज करते हैं उसको। ये हम हरेक करता है, हम जहां है उसको करते हैं, क्योंकि खाने और पानी में बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं। जैसा अन्न वैसा मन होता है, जैसा पानी वैसी वाणी होती है, तो अन्न और पानी को एनर्जी में आप एनर्जाइज हो जाएगी। कर सकते हैं 5 सेकंड खाने पानी से पहले, ऐसे तो नहीं बोलेंगे बहुत बिजी है टाइम नहीं है, नहीं, खाने और पानी से पहले जैसे आप हाथ धोना कभी नहीं भूलेंगे, उसी तरह खाने और पानी को एनर्जाइज करना कभी नहीं भूलना। ये छोटी चीज है, इतना सिंपल है ना, रात को 1 मिनट, सुबह 1 मिनट, 5 सेकंड्स बिफोर ईटिंग, 5 सेकंड्स बिफोर वॉटर, बचपन से सुना था कि खाना खाने से पहले क्या करना है, प्रे करना है, परमात्मा को याद करना है, हम करते नहीं है, आजकल करते नहीं है, तो इसलिए वो वाइब्रेशन हमारे ऊपर असर कर देती है। उसका मीनिंग ही ये था कि खाने को एनर्जाइज करके खाना खाना है, पानी को एनर्जाइज करके खाना खाना है, फिर हमारा मन और हमारी वाणी अपने आप एनर्जाइज हो जाएगी। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, सात्विक खाना खाएंगे, ये 3 दिन आपको पता है क्यों इतना पीसफुल लग रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक पीसफुल वाइब्रेशन में है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप पॉजिटिव कॉन्टेंट सुन रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैजिक जो है ना वो डाइनिंग हॉल में होता है, वो आपको पता ही नहीं है, वो तो सीक्रेट वाला मैजिक है, वहां पर जो खाना है ना वो बहुत पीसफुल वाइब्रेशन में बनाया जाता है, मेडिटेटिव स्थिति में बनाया जाता है। आप सबको डाइनिंग हॉल से पीछे किचन है ना जहां, वहां जाकर जो खाना बनाते हैं ना उनसे पूछना चाहिए कि यहाँ पे आप खाना बनाने के समय कौन सा ध्यान रखते हो, और जो वो ध्यान रखते हैं ना आप अपने हॉस्पिटल के किचन में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने घर के किचन में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हीलिंग फास्टर होगी। तो खाना बनाते समय कोई नेगेटिव वर्ड्स किचन में नहीं होने चाहिए, खाना सात्विक बनता है, और खाना बनाते समय परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा के शब्द, ज्ञान के शब्द, भजन, परमात्मा के गीत रसोई में अगर चले तो खाना प्रसाद बन जाता है, वो खाना आपको पीसफुल फील करा रहा है। यहाँ पे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज फ्रॉम द किचन, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ हॉस्पिटल दैट फूड शुड बी वेरी हाईली एनर्जाइज्ड। टुडे इन मेडिकल प्रैक्टिस वी आर ओनली सीइंग हाई न्यूट्रिशन फूड, yes, high nutrition food, but high vibrational nutrition food. Low vibrational nutrition food healthy नहीं हो सकता, high vibration, high nutrition food. तो घर का खाना लेकर जाए और घर में भी high vibration से बने और सात्विक खाना खाएं। भारत के हर डॉक्टर का ये बहुत important जिम्मेवारी है कि खुद experiment करें कि वेजिटेरियन डाइट हेल्दी है फॉर द माइंड एंड फॉर द बॉडी, एंड फिर हर एक पेशेंट को बताना शुरू करें। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम हो गया इतने सालों का कि नहीं जी प्रोटीन नहीं मिलती, कमजोर हो जाते हैं, हमारा बच्चा कमजोर हो जाता है, ये समाज में फैल गया है एंड उसकी वजह से वो तामसिक भोजन खा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं जिसमें दर्द है, गुस्सा है, हिंसा है, डेथ है। यू नो इट बेटर देन एनीबडी कि एक डेड बॉडी की क्या एनर्जी होती है, और फिर भी हमने उनको बोल दिया कि दिस इज हेल्थ। हमें बोलना है दिस इज प्रोटीन नॉट हेल्थ, दो बातों में फर्क है। हाउ कैन डेथ गिव हेल्थ? इट कैन गिव प्रोटीन नॉट हेल्थ। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड दिस इज गोइंग टू बिकम आर कर्मा इफ वी डोंट टेल पीपल द ट्रुथ। हमें सच बताना है उनको कि जितनी चीज लिविंग होती है उतनी ही वो न्यूट्रिशन और शक्ति देगी। आज सब्जी भी फ्रेश है, पहले दिन है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई है, फिर वो 3 दिन पुरानी हो जाती है, उसकी लो हो जाती है, फिर उसको बॉइल कर दो और कम होती है, पका दो भुन भुन के वो और कम हो जाती है। तो फिर जो हम तामसिक भोजन खा रहे हैं उसकी क्या न्यूट्रिशन है? वो तो डेथ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी प्रिजर्व इन द फ्रिज फॉर सो मेनी मंथ्स एंड देन बीइंग ईटन, वी कॉलिंग इट हेल्थ। सो वी हैव टू टेल। आज विदेश में, इतने सारे देशों में डॉक्टर्स ओपनली बात कर रहे हैं इसके बारे में कि प्लांट बेस्ड डाइट। We also have to come out and talk openly about it. तो खुद एक्सपेरिमेंट करें, दिखेगा कि मन कैसा फील करता है और बॉडी फील करती है। नॉन वेजिटेरियन डायट इज नॉट जस्ट लो वाइब्रेशन, इट इज टॉक्सिक बिकॉज वो इंटेस्टाइन में इतना टाइम रहे, इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर ही दी। सो लाइट फूड इज हेल्दी, इट डजंट बिल्ड अप एंड क्रिएट टॉक्सिन्स इन आर बॉडी। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट करें, आप यहां से जाने के बाद कम से कम 3 महीना इस सात्विक डाइट को कंटिन्यू करें, मतलब प्लांट बेस्ड डाइट, घर पे कुक्ड इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप देखिएगा आपके अंदर से ये लेफ्ट साइड के स्ट्रेस, एंगर, इमोशन तो ऐसे ही डिप्लीट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे बिल्कुल। और जब हम यहां से वापस जाएंगे तो हम अपना अमृत वेला मेडिटेशन, हम रोज सुबह का स्पिरिचुअल कॉन्टेंट तब कंटिन्यू कर पाएंगे अगर हम जाकर वहां जो हमारा सेंटर है मेडिटेशन सेंटर उसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। नहीं तो यहां रह के लगता है ऐसा हम जाके वापस रोज करेंगे, बट आपको पता है वो नहीं होगा। जब तक हम उसको संग में रहकर उनके सबके साथ, उनके साथ इकट्ठे मिलकर इसको आगे करें, फिर हम उसको हमेशा के लिए एक स्पिरिचुअल डिवाइन लाइफ स्टाइल बना लेंगे एंड दैट इज अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। यहाँ जो आप लीड कर रहे हैं इट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, इमोशनली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी। और जब ये आप करेंगे देन यू बिकमिंग एम्बेसडर्स ऑफ हेल्थ, एम्बेसडर्स ऑफ अ गुड लाइफस्टाइल। हर एक जो डॉक्टर आपसे मिल रहे हैं इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो भी आपके तरह सुबह से रात तक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो अपनी डेली मेडिटेशन, वो डेली अपनी स्पिरिचुअल स्टडी एक भी दिन मिस नहीं करते हैं, एक भी दिन नहीं मिस करते हैं। सो इफ दे कैन डू इट, वी कैन ऑल डू इट, वी कैन ऑल डू इट। और प्रैक्टिस तो जरूरी है बिकॉज माइंड से लाइट और हैप्पी रहते हैं। सो थैंक यू सो मच विद यू, इवन दो नॉट देयर बट लाइक दिस, ऐसे ही लग रहा है कि आप सबसे मिलने का मौका मिल गया। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ओम शांति।
ओम शांति। ऑलरेडी हम लोग लेट हैं थोड़ा, तो जिनको जरूरत है वो बाहर जा सकते हैं।